नौरानी पैकर। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें जोरों शोर से झाग उड़ाती किनारे पर आईं तो यूं लगा जैसे रेत के नन्ने नन्ने जर्रात में तहलील हो गईं, और इन चांदी मिले जर्रात ने जब मुदाफियत की तो वो खुद भी लहरों के साथ समंदर में जा मिले। दम तोड़ती लहरें वापस होने लगीं तो समंदर की सतह पर ताहद नज़र बल खाती हुई लकीरें बन गईं। महसूस हुआ कि समंदर करवट बदल रहा है। जैसे जैसे सुकून समंदर में मुंतकिल होता रहा, मौजों में तोगियानी आती रही और समंदर तूफान बनकर साहिल की तरफ रवां दवां होता रहा। ये सिलसिला कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा किसी को मालूम नहीं। 9 मंजिला बरतानवी जहाज की 8वीं मंजिल पर जब मैंने नजर दौड़ाई तो जहाज की तामीर में हर जगह लोहा नजर आया। दीवारें लोहे की, फर्श लोहे के, मस्तूल लोहे का, हिफाजती कश्तियों में लोहा, दरवाजे लोहे के, सीढ़ियां लोहे की बनी हुई इस अजीम शान कारीगरी को देखकर बराए शऊर में खालिक कायनात की आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। और हमने लोहा नाजिल किया और इसमें इंसानों के लिए बेशुमार फायदे हैं। ये 9 मंजिला लोहे की इमारत समंदर में तैर रही थी। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल में ट्रक और कारें थीं। चौथी, पांचवी और छठी मंजिलें मुसाफिरों के लिए थीं। 7वीं मंजिल पर होटल, ड्यूटी फ्री शॉप और कैसीनो थे। 2 और 4 मुसाफिरों के लिए 2000 कैबिन थे। हर कैबिन एक मुकम्मल घर था। कपड़े रखने के लिए काफी बड़ी अलमारी, सिंघारदान, खाने की मेज, ठंडे गर्म पानी का बाथरूम, नहायत आरामदेह बर्थ, बर्थ के सरहाने, मुताले के लिए रोशनी का इंतजाम, धुले हुए तौलिए, पानी पीने के लिए गिलास, गर्ज इस कमरे में हर वो चीज मौजूद थी जिसकी सफर में जरूरत हो सकती थी। 8वीं मंजिल पर ऑडियोटोरियम, 9वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम और धूप सेंकने के लिए अरशे पर बड़े बड़े सहन जिसमें नहायत सलीके से जहाज के रंग से मुनासबत रखती हुई सफेद कुर्सियां बिछी हुई थीं। अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, देख, इस कौम ने हमारी आयत पर गौर व फिक्र किया। हमने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख़र कर दिया ताकि तुम इसमें कश्तियां चलाओ, और हमने इस तफक्कुर को कबूल करके इनके अंदर इजाद की सलाहियत को बेदार कर दिया। मेरी आंखों से नूर के मोती रुखसारों से गुजरते हुए जब लोहे के फर्श से टकराए तो मैंने देखा कि इस 9 मंजिला 5 स्टार होटल के मन में आग भड़क उठी। जहाज ने एक आह भरी और ये आग धुआं बनकर चिमनी के रास्ते आसमान की तरफ बुलंद हुई और फिजा में फैल गई। फिजा में फरिश्तों की नौरानी टोला को यह कहते सुना, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा था और धुएं को हुक्म दिया कि दाखिल हो जा, मर्जी से या मर्जी के बगैर। धुएं ने कहा, मैं तो आपका ताबेदार हूं। धुआं धुआं दिल, भीगी भीगी पलकों, अरशे पर खड़ा मैं ये सब देखता रहा। भौंचाल में जहाज डोलने लगा तो दिमाग में भी भौंचाल आ गया। अंदर की आंख ने अंदर एक मूर्ति देखी। मन में मैल न हो तो दिल आईने की तरह हो जाता है। बाहर अंदर, यहां वहां, हर सिमत अल्लाह ही तो है। दिल ने अपने अंदर 72,000 टाइम स्पेस की गहराई के वक्फों में नौरानी पैकर से पूछा, समंदर की मौजों में ये बेकरारी क्यों है? नौरानी पैकर बोला, समंदर की मौजें अपने मरकज से जुदा हो गई हैं। ये बेकरारी इसलिए है कि वो दोबारा अपने मरकज से गले मिलना चाहती हैं। समंदर से मौजें साहिल की तरफ बढ़ती हैं, साहिल पर जबी साई करती हैं तो मरकज से दूर हो जाती हैं। तो सारा जोर, सारा तूफानी वलवला और तवानाई साहिल पर मुंतशिर हो जाती है। मौजें दोबारा समंदर के मरकज में बाहों में बाहें मिलाने के लिए वापस होती हैं। रूह की बेकरारी के साथ मौज की रूह मरकज में जज्ब होना चाहती है। यही हाल कायनात की असल रूह का भी है। अजल में खालिक से जो दूरी वाके हुई थी, रूह इस दूरी को ख़त्म करने अपने महबूब से दोबारा हम आगोश होने के लिए समंदर की मौजों की तरह बेकरारी के आलम में सऊद से नजूल करती है। जब ज़मीन की छाती से टकराती है तो बिखर कर टूट कर नए नए कालब में ढलती चली जाती है। रूह चाहती है जैसे भी नई नई तस्वीरों में जलवागर होकर दोबारा खालिक कायनात की गोद में सिमट जाए, अपने असल की तरफ लौट जाए, वो असल जो अजल से अबद तक है और हमेशा रहेगी और जिसको कभी जवाल नहीं। जिस तरह जिंदगी बोलती है, सुनती है, महसूस करती है, इसी तरह रूह भी बोलती है, सुनती है, महसूस करती है।